پاکستان کی خواتین کی تحریک نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ ہمیں دیگر ملکوں میں نظر نہیں آتی.
ہم سب کو پڑے تھے ڈنڈے, اور ڈنڈے کھانے کے بعد ہمیں ڈنڈے کا ڈر اتر گیا.
حملہ یہی کیا جاتا ہے کہ وہ یہ تو ایلیٹ خواتین ہیں, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ
تاریخ میں کوئی ایسا وقت نہیں جب کہ عورتوں نے ریزسٹ نہ کیا ہو.
آپ کو وہاں پر جو پوسٹرز نظر آئیں گے اس میں آپ کو آسمہ جہانگیر صاحبہ نظر آئیں گی, آپ کو قندیل بلوچ نظر آئیں گی.
السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ کا میزبان حارث خلیق ایک مرتبہ پھر اسی پوڈ کاسٹ سیریز کی ایک کڑی کے ساتھ حاضر ہے, جس میں ہم پاکستان کے 75 سال گزرنے پر اور پاکستان کی 75ویں سالگرہ پر ملک کے اور سماج کے سیاسی, ثقافتی, فنون لطیفہ, ادب, فلم, سپورٹس, فکر و فلسفہ, ان تمام موضوعات پر اور یہاں چلنے والی تحریکوں پر گفتگو کرتے ہیں کچھ ماہرین کے ساتھ, پاکستان کے ان سرکردہ اور ان نامور لوگوں کے ساتھ, اور اگر وہ بہت نامور نہ بھی ہوں تو بھی جنہوں نے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے پاکستان کے سماج اور پاکستان کی سیاست میں. تو آج کا جو یہ پروگرام ہے, یہ جو کڑی ہے پوڈ کاسٹ کی, یہ پاکستان میں چلنے والی حقوق نسواں کی تحریکوں سے متعلق ہے, یعنی خواتین کی تحریکیں. پاکستان ایک ایسا ایک منفرد ملک ہے جہاں, اور برصغیر جنوبی ایشیا میں بھی اور پوری مسلم دنیا کے بھی, جو اگر آپ جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اس بات پر واضح طور پر فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی خواتین کی تحریک نے جو کامیابیاں حاصل کیں وہ ہمیں دیگر ملکوں میں نظر نہیں آتی. پاکستان کی خواتین کی تحریکوں نے جس طرح جمہوریت, وفاقیت, مساوی شہریت کو فروغ دینے کا کام کیا وہ ہمیں دنیا کے بہت سے ممالک میں نظر نہیں آتا, اس طرح سے ان تحریکوں کا منظم ہونا نظر نہیں آتا. اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, چونکہ ان تمام تحریکوں کی کامیابیوں اور ان کی جدوجہد کے باوجود جو خواتین کے اور بچیوں کے مسائل ہیں پاکستان میں, اقلیتوں اور خواجہ سرا اور دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ دیگر جنہیں ہم انگریزی میں ایکسکلوڈڈ گروپس کہتے ہیں, مارجنلائز گروپس, حاشیے پر رہنے والے لوگ, ان کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچیوں کے مسائل آج بھی بڑے پیمانے پر اسی طرح سے موجود ہیں, اور ان کے خلاف ہونے والے جرائم میں ایک اضافہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. اس سب پہ گفتگو کے لیے اور ذرا 75 سال کی تاریخ پر بھی ایک روشنی ڈالنے کے لیے اور عصر حاضر کے مسائل کو بھی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس دو نہایت ہی معزز مہمان یہاں موجود ہیں, نیلم حسین صاحبہ. نیلم حسین صاحبہ نے ایک, ان کا ایک خاص تعارف جو میرے لیے ذاتی دلچسپی کا باعث ہے, وہ ان کا ادب اور ثقافت سے گہرا تعلق ہے. انہوں نے پنجاب کی لوک داستانوں پر کام کیا ہے, انہوں نے خدیجہ مستور کے ناول کا انگریزی آنگن جو ہے اس کا ان اے کورٹ یارڈ اردو سے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے, انہوں نے دیگر بہت سے تحقیق کے کام کیے ہیں, یہ معلمہ ہیں, یہ محقق ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق, ویسے انسانی حقوق میں شامل ہوتے ہیں, علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن ان خواتین کے حقوق کی اپنی ایک شناخت علیحدہ سے بھی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ ویمنز رائٹس آر ہیومن رائٹس, لیکن چونکہ وہ ایک زیادہ مارجنلائزڈ ایک طبقہ سمجھا جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے خصوصاً بہت زیادہ کام کیا ہے. تو نیلم آپا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور اس پوڈ کاسٹ کو جوائن کیا. اور دوسری ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے دور کی ایک سیاسی اور سماجی رہنما, خاص طور پر نوجوان خواتین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں, چونکہ انہوں نے اپنے تمام جو ان کی دنیاوی مصروفیات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سماجی ذمہ داری ہے, سوشل رسپانسبلٹی, اسے اس کو سمجھا ہے اور اسے نبھایا ہے. اور وہ جو نئی تحریکیں چلی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا. عورت مارچ کا جیسے سلسلہ رہا ہے پاکستان میں پچھلے چند برسوں سے, جو ہم ساری دنیا کے ساتھ 8 مارچ کو ہر سال مناتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی عمل میں خواتین کی شمولیت, ایک سیاسی جماعت سے بھی ان کا بہت سرگرم ہے آج کل, نایاب علی جان. نایاب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور اس پوڈ کاسٹ کو جوائن کیا. نیلم آپا اگر آپ اجازت دیں تو پہلا سوال میں نایاب سے کر لوں.
بالکل,
چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ذرا آج کی صورتحال پہ بات کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ تحریکیں کیا ہیں اور کہاں لے جا رہی ہیں ہمیں, اور ان کی کیا کامیابیاں اور کیا ناکامیاں ہیں, اور وہ کامیابیاں اور ناکامیاں کیوں ہیں. اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس کے بعد ہم ذرا پیچھے جائیں گے اور نیلم آپا کے تجربے اور جو ان کی ایک انسائٹ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے.
جی, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं समझती हूँ कि आज की जो भी तहरीकें हैं उनकी कोई भी डिस्कशन, ऑफकोर्स जो पुरानी जो एक हिस्ट्री है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो माजी में जिस तरह से ख़वातीन ने जद्दोजहद की, उनकी डिस्कशन से हम उनको ऑफकोर्स डिटैच नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करें तो मेरे ख़्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ग्लोबल शिफ्ट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी नई रियलिटीज़ हैं जिनकी वजह से कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स जो हैं वो सामने आईं। अगर हम पर्टिकुलरली औरत मार्च की बात करें तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूएशन है पुराना जो फेमिनिज़्म था उसके साथ, और कुछ नई रियलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो करंट मूवमेंट है वुमेंस राइट्स की, उसके अंदर जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, उसके अंदर जो बॉडीली ऑटोनमी है, इस तरह की बहुत सारे नए इश्यूज़ हैं जो कि एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी तरीके से सामने आए हैं।
यानी शख्सी आज़ादी।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो उसकी बात पहले भी हो रही थी, लेकिन इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो ये वेव है फेमिनिज़्म की, वो बात करती है कि हमने सिर्फ कलेक्टिवली बात नहीं करनी, लेकिन हमने जैसे कि आपने कहा शख्सी आज़ादी की भी बात करनी है, और उसमें बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात की जाती है। उसके अलावा ये है कि फेमिनिज़्म जो ये लफ्ज़ है, मेरे ख़्याल में उसकी मुकम्मल तौर पर ओनरशिप लेना और उसको समझाना जो इस वक्त की मूवमेंट है, उसका ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा है कि जो बहुत मुश्किल था, आज भी मैं समझती हूँ ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है इस लफ्ज़ को ओन करना। इस लफ्ज़ के पीछे इतना ज़्यादा क्योंकि प्रोपेगेंडा किया गया है, इतना ज़्यादा इसको मलाइन किया गया है कि इस लफ्ज़ को समझाना, इस लफ्ज़ को पूरी तरह ओन करना। और जो अगर आप औरत मार्च की बात करें तो उसके मंशूर को अगर आप देखें, उसमें फेमिनिज़्म को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है और फिर लिंक किया जाता है जो माशरे में बाकी जो सारे तबकात के मसाइल हैं उनके साथ। और ये कहा जाता है कि जब तक हम बाकी जो तहरीकें हैं, ख्वाह वो मज़दूरों की तहरीक हो, वो और जो मार्जिनलाइज तबके हैं, जब तक हम उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो तब तक सबके लिए जो है वो आज़ादी नहीं आ पाएगी। सो दीज आर द कंटेम्प्रेरी रियालिटी।
लेकिन नायाब, इससे मुझे एक सवाल फौरी तौर पर जहन में आया। फेमिनिज्म को उर्दू में मेरे ख्याल है तानीसियत कहते हैं, लेकिन ये जो आपने कहा ये बहुत अहम बात है कि जब तक दीगर मेहनत कश तबकात और दीगर जो जिनके हकूक सल्ब हुए हैं, चाहे वो कौमें हों, कौमियतें हों, सकाफती ग्रोह हों या मज़दूर हों, किसान हों, जो हमने बात की, तो नारे तो मुझे समझ में आते हैं। जैसे मैं अगर औरत मार्च की भी मिसाल लूं, या महज औरत मार्च की बात नहीं है, दीगर जो तहरीकें इस नौयत की चल रही हैं और भी हैं, उनमें हमें नारे तो सुनाई देते हैं कि मज़दूर भी मांगे आज़ादी और किसान भी मांगे आज़ादी और तलबा भी मांगे आज़ादी, मगर उनकी जो शिरकत है बड़े पैमाने पर, यानी ट्रेड यूनियंस की जो पाकिस्तान में जिस भी हालत में हैं मगर मौजूद हैं, जो किसानों की तंजीमें हैं उनकी, उससे हमें ये मुख्तलिफ नज़र आता है। यानी उनकी, आप तो उनके लिए आवाज़ उठाती हैं मगर उनके साथ शायद उस किस्म का इल्हाक और उस किस्म के अलायंसेस अभी तशकील नहीं पा सके, उसकी क्या वजह है?
अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ भी करूँगी। मेरे ख़्याल में जिस तरह से बताया जाता है, क्योंकि देखें पहले भी जो वुमेंस मूवमेंट थी 1980s की भी, उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा जो तनकीद की जाती थी वो यही थी कि ये इलीटिस्ट है। और फेमिनिज़्म के ऊपर हमेशा से ही पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा, सबसे पहला हमला यही किया जाता है कि वो ये तो एलीट ख़वातीन है, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये वो, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस नज़रिए में। लेकिन मेरे ख़्याल में जो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स हैं उन्होंने बाकायदा इस बात पर इस्पेशली गौर किया है कि हमने इसको जो है वो तबकाती जो स्ट्रगल है उसके साथ जोड़ना है। अगर आप देखें तो, क्योंकि देखें कुछ इसमें रियलिटीज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है, मोबिलाइजेशन जो एफ़र्ट्स हैं कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स के, उनके अंदर जो लो इनकम ग्रुप्स हैं या जो ट्रेड यूनियंस के ग्रुप्स हैं,
नर्सेज हैं, स्कूल टीचर्स हैं,
बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, उनके साथ बाकायदा अलायंसेस बनाई गई हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन उन कम्युनिटीज़ में की गई है, उनके लिए हेल्थ कैंप्स करवाए गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके थ्रू वहाँ पर मोबिलाइजेशन की कोशिश की गई है. सो आई थिंक ये बहुत वाज़े तौर पर जो है वो एक रिकग्नाइज किया है कंटेम्प्रेरी.
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इख्तलाफ किया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत से सामईन का वही ख्याल होगा जो सवाल मैंने आपसे किया, और शायद किसी हद तक मेरा भी था, तभी मैंने आपसे सवाल किया और उसकी आपने वजाहत की. तो आप दोनों से गुजारिश ये है कि इख्तलाफ बिल्कुल करते रहें, इसमें हम तीनों को हर बात पर रजामंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. नीलम आपा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा हमें तारीख़ में ले जाएँ और उसकी वजह यह है ताकि हम उस सियाक व सबाक को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें जिसमें ख्वातीन की तहरीकों ने जन्म लिया पाकिस्तान में.
ओके, अच्छा, एक तो मैं शुरू करूँगी कि तारीख़ में कोई ऐसा वक्त नहीं जबकि औरतों ने रेजिस्ट ना किया हो.
हमारी तारीख में,
दुनिया की तारीख में और हमारी तारीख में, जिस दायरे में उनकी जिंदगियां थी उनमें बगावत होती रही, उसके बाहर भी होती रही, बाउंड्रीज भी पुश होती रही, उसमें क्लास फैक्टर भी आ जाता है, सोशल स्टेटस का भी आ जाता है कि कौन, रज़िया सुल्ताना ने अगर कुछ किया तो वो मलिका थी, अगर किसी मालन ने कुछ किया तो वो
मालन थी.
तो उनके दायरे फ़र्क होंगे, बट आई थिंक रेजिस्टेंस जो है अगेंस्ट ओप्रेशन वो एक इंसानी इंस्टिंक्ट भी है, आई वुड से, कि यू डोंट टेक ओप्रेशन कंफर्टेबली और हैप्पीली.
जबर के खिलाफ
एक ह्यूमन रिएक्शन होता है.
ठीक है,
ये मैं उस हवाले से, जहाँ तक हमारी अपनी तारीख का ताल्लुक है, ये भी पाकिस्तान की तारीख से पहले जाती है, और हिस्टोरिकली अगर इसे लिंक करें, क्योंकि मेरा ख्याल है मूवमेंट्स खला में नहीं पैदा होती, या एक्शन भी जो हो वो खला में नहीं पैदा होता. तो इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट आई एज अ रिस्पॉन्स टू कलोनियलिज्म,
लेट नाइनटीन सेंचुरी.
उसमें से जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने अपने आप पे गौर करना शुरू किया, अपने कॉन्टेक्स्ट में तब्दीलियां लानी चाहिए टू ब्रिंग इट अप ऑन पार विद मॉडर्निटी एज एनविसेज्ड ओके बाय द कलोनियल पावर, पर क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस वो था, तो उस वक्त फिर औरतों की भी मूवमेंट शुरू होने लगी. फॉर द राइट टू एजुकेशन, फॉर एंटी पर्दा मूवमेंट चली, सारे इंडिया में चली
20वीं सदी के अवायल में.
और फिर राइट टू वोट, जबकि हमारी औरतें उठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे भी गईं, उनकी सरकार से भी झगड़ा. और जो कहते हैं कि
यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं 1929, 30, 31, 32 वाला, जी,
जब ये यहाँ के लीडरान जा रहे थे गोरी सरकार से बातचीत करने अपने
मसाइल पर,
तो वहाँ इन्होंने रेज़ किया, और वहाँ सपोर्ट मिली उनको फ्रॉम इंग्लिश फेमिनिस्ट्स.
सफ्रजेट्स का मूवमेंट ताज़ा चला था.
तो वो कहीं रेजोनेट किया वहाँ, और 1935 में हमने वोट हासिल कर लिया यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. आई थिंक बरे सगीर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट अमंग द अर्लीस्ट टू गेट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज.
1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
या
जी,
तो वहाँ से उसके बाद फिर तहरीक, फिर पाकिस्तान की आज़ादी की, फिर आज़ादी की तहरीक चल गई, क्विट इंडिया मूवमेंट, पाकिस्तान की तहरीक, उसमें औरतें हिस्सा ले रही थी, तो कहीं आहिस्ता आहिस्ता पोलिटिसाइज हो रही थी. अब आई मीन इट्स अ वेरी, वन कैन गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, पर वो तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा टू गेट माई फैक्ट्स राइट ऑल्सो. अभी तो मैं जो याद है वो बता रही हूँ. फिर 1913 में लाहौर फरीदकोट हाउस में अंजुमन ख़वातीन इस्लाम की मीटिंग थी, जहाँ मुमताज़ शाहनवाज ने रेड प्रेजेंटेड हर पोजीशन एंड ऑन एन एंटी पोलिगमी पोजीशन, और वो पास हो गई थी विद फुल कंसेंसस. सो
कसरत अज़वाज के खिलाफ,
जी हाँ,
पोलिगमी के खिलाफ, जी.
तो उसके बाद फिर जब पाकिस्तान बना, तो एक हमारी जो नानियाँ दादियाँ माएँ थीं वो एक प्रोसेस में से गुजरती चली आ रही थी. फिर अपवा बन गई, अपवा वॉज अ वेरी,
और
पाकिस्तान वेमेंस एसोसिएशन, इट वॉज फाउंडेड बाई राना लियाकत अली, वाइफ ऑफ लियाकत अली हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर, सो इट हैड ऑफिशियल सेंक्शन. पर क्योंकि ऑफिशियल सेंक्शन थी, उसमें इट वॉज कोशर ऑल्सो एज फार एज द गवर्नमेंट वॉज कंसर्नड. सो बहुत सी उसकी मेम्बरशिप आई ब्यूरोक्रेट्स की बीवियों में से. पर वैन पुश कम्स टू शव, उन्होंने फिर आवाज़ उठाई जब मोहम्मद अली बोगड़ा ने दूसरी शादी की. तो क्योंकि पहली बीवी बेफैशनी थी और अब उनको फैशनेबल बीवी चाहिए थी एज द फर्स्ट लेडी. तो इट वॉज अप दैट लेट द मूवमेंट और उन्होंने फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस पास करवा लिया
1961
में. और तब मुझे दिस इज विद इन माई लिविंग मेमोरी ऑफ सीइंग वुमेन ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑफ सीइंग मेल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो ऑफ प्रोग्रेसिव मैन लाइक माई फादर हु वॉज फुली सपोर्टिव ऑफ दम बट समवेयर फाउंड द थॉट ऑफ वुमेन
पोलिटिकली अम्यूजिंग.
वो थोड़ा सा वो टच था. पर साथ साथ फिर डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन भी थी
जी,
जो कि
जमहूरियत पसंद खवातीन,
जहाँ तायरा मज़र अली जैसी लोग हैं, शमीम अशरफ मलिक और इस टाइप के लोग, एलिस फैज भी थी. तो वो लेबर के साथ उनका राबता था. अब
कम्युनिस्ट पार्टी के
अगर आप एलिटिज्म का जो ताना तोमत लगती है तो आई थिंक यू कांट गो हायर देन तायरा मज़र अली इन
इन
बीइंग एलीट. बट हर वर्क वाज विद द लेबर एंड हर मोड ऑफ ड्रेस वाज आल्सो नॉट एलिटिस्ट.
जी,
मुझे एक वाकया याद है. ये और मज़र अली खान शाम को वॉक किया करते थे और इसी घर में पैदल आए तो नया खानसामा था हमारा. तो हम लोग बाहर थे, जब हम घर आए तो बाहर चारपाई पे दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे क्योंकि खानसामे ने उनके कपड़े देख के उनको अंदर घर के नहीं बिठाया था. सो यू नो देर आर स्टीरियोटाइप्स एंड क्लीशेज जिनसे हम फैसले करते हैं या असेस करते हैं, पर रियलिटी इज़ वेरी 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 वेरिएगेटेड. सो विच डजंट मीन के दे वर टोटली नॉन एलीट, यू नो इट्स चलता है. सो जहाँ तक वुमेन्स एक्शन फोरम का ताल्लुक है या जो आज की जो एक चली है तहरीक, तो ये वी ओ इट टू ज़ियाउल हक जिन्होंने जब क्योंकि एक तो पावर कैप्चर किया फ्रॉम अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो भी उसके मसले थे उस वक्त. और अमेरिका ने क्योंकि जंग आना चाह रहा था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान वॉज अ वेरी कन्वीनियंट कैट्स पॉ. हमने कैट्स पॉ का रोल लिया, बारे न्यारे हो गए ज़िया के, एक लेजिटिमेसी मिल गई ग्लोबली इंटरनेशनली फ्रॉम द सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड. एंड रिलीजन बिकेम अ स्ट्रेटजी एंड अ टूल, अ पावर स्ट्रेटजी एंड ऑफ
ताकत का आलायकार बनाने में किरदार अदा किया जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका की मदद से
और अमेरिका की और सऊदी अरेबिया की मदद
और सऊदी अरेबिया की मदद से.
और एक जो ज़िया की अचीवमेंट मैं कह सकती हूँ वो ये थी, क्योंकि सारी स्टेट पावर उसके पीछे थी, उसने हमारी डिस्कर्सिव लैंडस्केप जो हमारी उसमें एक बहुत तब्दीली लाई. उस वक्त जब हदूद ऑर्डिनेंसेज आए तो वही औरतें जो वुमेन्स एक्शन फोरम की पहली मेंबर्स थी, उनकी बैकग्राउंड भी कोई पढ़ा रही थी, कोई साफी थी, कोई यू नो सो उससे पहले लेफ्ट विंग प्रीज या लेफ्ट विंग स्टडी ग्रुप्स में एक्टिव, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ये उन लोग वो इकट्ठे हुए कराची में, शिरकत का ने कॉल दी मर्दों औरतों को कि भाई ये हदूद ऑर्डिनेंसेज, एक वो केस आया था आपको शायद ना याद हो फहमीदा अलाबख्श का वर्सेस द स्टेट. फहमीदा ने अलाबख्श से अपनी मर्जी से शादी कर ली. अब अलाबख्श का सोशल स्टेटस ज़रा सा कम था फहमीदा से. उन्होंने जो गोरों के वक्त से एक रिवायत बनी हुई थी कि आप पुलिस में FIR कटा दें कि हमारी बेटी अगवा हो गई, इसको वापस लाएं, उनको नहीं मालूम था कि हदूद ऑर्डिनेंस लग गई है और जिना ऑर्डिनेंस में
बेटी को सज़ा होगी
और 100 कोड़े लगेंगे और अलाबख्श को शायद पथराव करके संसार कर देंगे. सो आई थिंक ये जैसे चौंका देता है ना, तब बुलाया गया. मर्दों ने कहा नहीं यार ये बातें हैं, तब से जब से पाकिस्तान बना है ये कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता. ویمنز ایکشن فورم وہاں بنا, وہاں سے پھر فریدہ شہید لاہور آئیں, تو لاہور میں میٹنگ ہوئی. یہاں ہمارے ساتھ گھر تھا, اب تو وہ ٹوٹ گیا ہے, فرخ نگار عزیز کا گھر.
جی,
فرخ نگار عزیز واز پارٹ آف میرے بچپن کے لینڈ اسکیپ کا, کیونکہ یہ تھیٹر میں ان کا انٹرسٹ تھا. سو دیر از اے لنک بٹوین کریٹیوٹی اینڈ موومنٹس آلسو. تو یہ تھیٹر کرایا کرتی تھی, اور اسٹوڈنٹس کا ایک انہوں نے الفا گروپ آف پلیئرز بنایا ہوا تھا, جس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ادرز انٹرسٹڈ ان گڈ ایمیچر تھیٹر. سو ان کے گھر میں ویف کی یہ پہلا لاہور میں ملا گروپ, آئی تھنک 19
کراچی میں 1981 میں شرکت گاہ میں میٹنگ ہوئی, شرکت گاہ کے دفتر میں, پہلے
دفتر میں
جو ہماری ایک خواتین کے حقوق کی تنظیم ہے شرکت گاہ, اور اس کے بعد لاہور میں فرخ نگار عزیز کے گھر پر یہ میٹنگ ہوئی.
ہم گندے نالے کے اس طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گندے نالے کے اس طرف گھر تھا 21 برڈ وڈ روڈ, تو ان کے گھر میں یہ میٹنگ
تھی
21 برڈ وڈ روڈ. تو وہاں یہ وہاں میں یہاں نہیں تھی اس وقت, پر یہ تب
آپ تو باہر پڑھ رہی تھی,
میں باہر پڑھ رہی تھی. میں 83 میں آئی ہوں گھر ذرا ہیلو ہائی کرنے, اور آئی گاٹ کاٹ اپ ان دا 12 فروری کی پروٹیسٹ, جو کہ پہلی پروٹیسٹ تھی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف,
جس میں حبیب جالب کو ڈنڈے پڑے
جس میں حبیب جالب کو ڈنڈے پڑے مجھے بھی پڑے تھے, ہم سب کو پڑے تھے ڈنڈے, اور پہلی دفعہ ڈنڈے پڑے, اور ڈنڈے کھانے کے بعد ہمیں ڈنڈے کا ڈر اتر گیا. اب یہ میں ضرور کہوں,
یہ ہے 12 فروری 1983,
اور
جب ایم آر ڈی موومنٹ بھی چل رہا ہے,
اس کے بعد چلی.
اچھا,
میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ڈنڈوں کا ڈر اترا, کلاس فیکٹر آتا ہے. اس تحریک میں بہت سی ویزبلی ایلیٹ عورتیں تھیں, اٹ از کوائٹ لائکلی کہ پولیس نے اتنی زور سے نہ مارا ہوگا جتنی زور سے وہ مارتے اگر ورکنگ کلاس عورتیں ہوتی وہاں, کیونکہ ان کی بھی ماریں دیکھی ہوئی ہیں وہاں پولیس ایکشن. اینی وے, سو دیٹ از ویئر دا موومنٹ اسٹارٹڈ. پر کیونکہ ضیاء الحق تبدیلی لا رہا تھا تھرو لاز, ایک تو یونیورسٹیوں میں ادھر ادھر میں پڑھا رہی تھی تب, تو انسٹرکشنز تھیں کہ چادریں لیں, یہ کریں وہ. اب میں کہہ رہی ہوں لڑکیوں کی ریزسٹنس کہاں سے آتی ہے, انہوں نے چادر لی, انہوں نے چادر کو فیشن اسٹیٹمنٹ بنا دیا. اٹ واز نو لانگر وہ, آئی مین اٹ واز اسٹل ناٹ دا پردے کی علامت, اٹ واز اے ویری ٹرینڈی لائف اسٹائل. تو پر وہ جو پہلے
جو ایک سوشل سبورژن جسے ہم کہتے ہیں,
وہ ایک وہ انہوں نے کہا ہم لیں, کہتے ہیں چادر لو تو لیں گے, پر ہم پھر ایسے لیں گے جس میں ہم اچھے لگیں, آپ اور ہماری طرف دیکھیں اگر وہی آپ کا مسئلہ ہے. سو بٹ ٹو کم بیک ٹو دا ویمنز موومنٹ, اس دور میں ویمنز موومنٹ کا ویف کا فوکس قانون پہ تھا,
80 کی دہائی میں,
کیونکہ اور جو نایاب نے ابھی بات کی کہ باڈیلی رائٹس کی اب بات ہو رہی ہے, باڈیلی رائٹس وا ویری مچ دیر. ویف اٹ سیلف واز ویری اکلیکٹک, بڑا ملا جلا گروپ تھا, کیونکہ ہم نے نہیں پوچھا کون کہاں سے آ رہا ہے, اوپن پلیٹ فارم تھا. ہم نے شروع میں یہ بھی نہیں کہا کہ ہم سیکولر ہیں, ہم 10 سال کے بعد ہم نے اپنا پبلک گئے اس پہ, کیونکہ ہم اسٹریٹیجکلی نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں بین کر دیا جائے.
ٹھیک, قائم رہنا بہت ضروری ہے.
ویف نے نہ کبھی اپنے آپ کو رجسٹر کرایا, ہمارا نان نیگوشیبل ہے, ہم پیسہ کسی سے نہیں لیں گے, اگر کچھ چاہیے ہوگا تو خود اکٹھا کریں گے, آپس میں اکٹھا کریں گے, نہ اپنی سرکار سے لیں گے نہ باہر کی کسی سرکار سے, تو بالکل ہی نہیں لیں گے. اس لیے ایٹ ون پوائنٹ جب ہم پہ وہ تنقید ہوئی اور انہوں نے کہا ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھو, ہم نے کہا جی لب جائے تھے لب لو, تو دیکھ لو اس میں کیا ہے, بینک اکاؤنٹ ہوتا تو پیسے ہوتے نا, نہ دفتر تھا, دفتر ہوگا تو چھاپا پڑتا نا. تو اس لیے وہ ایک
ہمارے دفتر ہوگا اور بینک اکاؤنٹ ہوگا تو چھاپا,
تو چھاپا ہوگا, بین کریں گے تو ہمیں کون بین کرے گا. سو ایک اس میں لمیٹیشن یہ آتی تھی کہ ڈسیزنز ور بائی کنسنسس, دیر واز نو لیڈرشپ, کلیکٹو لیڈرشپ,
ایک نیوکلس کوئی نہیں تھا
ہماری, نہیں کیونکہ ہم اگر ہم نان ہائرارکیکل تھے, ہر ایک کی آواز کو اہمیت دیتے تھے, تو پھر لیڈرشپ نہیں ہوگی. اور یہ بڑا مشکل کانسیپٹ تھا لوگوں کو سمجھنے کا, اور کئیوں کو نہیں آیا سمجھ کے, کیونکہ اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب پوچھتا تھا کوئی رپورٹر یا کیا جی آپ کا لیڈر کون ہے, تو ہم کہتے تھے سارے, اپنا نمائندہ بھیج دیں ہم لیڈر سارے آئیں گے. اور یہ ایک وہ آئی جی کے ساتھ ہوا بھی کہ ہم نے کہا ہم تو سارے آئیں گے, تو तो वो तोड़ नहीं सकते थे ना, जब सारे गए तो वो ही वॉज मोस्ट अपसेट क्योंकि सारे बोल रहे थे उसको भी तनकीद कर रहे थे।
कब की बात है
ये, अब मुझे तारीख नहीं याद। ये रेप केस हुआ था एक, और उस पर एहतजाज हुआ था आउटसाइड द सेक्रेटेरिएट। तो सड़क क्योंकि ब्लॉक कर ली, तो उन्होंने भेजा कि अपनी नुमाइंदे भेज दें तो हम
उनसे गुफ्तगू कर
करते हैं कि हम क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जा रहा था। आई थिंक वहाँ ब्लेम उन्होंने जिसके साथ रेप हुआ था को पुलिस ने उसी पे डाला था कि ये जो जो एक रवायत होती है। तो फिर उनको सबको बुलाना पड़ा और वो फरीदा के पास क्योंकि वीडियो कैमरा था तो वो वीडियो उसका रिकॉर्डर ऑन ही था। आई डोंट नो वो अब कहाँ गई,
फरीदा शहीद के पास,
फरीदा शेर के पास शी वॉज
फायर ब्रांड।
तो वहाँ झगड़ा भी हुआ उससे, फिर आगे चली बात। सो कहाँ मैं कह रही थी कि वैफ का फोकस तब कानून पे था। वी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लॉ ऑफ एविडेंस,
अगेंस्ट कानून शहादत के खिलाफ,
जिना ऑर्डिनेंसेस, हदूद ऑर्डिनेंसेस, फिर किसास इंदियत के कानून के खिलाफ, फिर ब्लास्फेमी लॉ के भी वी द फर्स्ट। और हम माइनॉरिटीज के पास गए थे कि ये आपके आड़े आएगा, हमें ज्वाइन करें। पर वो एक चीज़ को कहीं रियलाइज करने में भी टाइम लगता है। हमने शुरू दिन से कहा था
इसमें वो कोई आप देख ना लेंगे क्या हुआ।
फिर जैसे उसके बाद नियामत अहमर का मर्डर
लबश केस में जब सामने आया तो 2 साल लगे ना, 79 में आ गए थे हुदूद ऑर्डिनेंसेस। अच्छा मैं जरा नायाब की तरफ जाता हूँ, फिर आपके पास मैं वापस आऊंगा और उन गेंस पे हम बात करेंगे, उन कामयाबियों पर बात करेंगे, क्योंकि हमने फिर विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट भी देखा तो ये सफर कैसे तय हुआ उसकी तरफ मैं आता हूँ। नायाब ये बताइए कि आपको ये महसूस होता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, वैसे माजी से भी जो इस वक्त की जो सूरत हाल से मुराद मेरी ये है कि इस वक्त जो तहरीकें चल रही हैं क्या उनका कोई रब्त है माजी की जो पाकिस्तान में चलने वाली तहरीकें हैं, या ऐसा है जो एक आपके यानी लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट कि बाहर से और यहाँ के भी अच्छे तालीमी इदारों से इंग्लिश मीडियम एज इट वर बच्चियाँ और लड़के भी बहुत साथ हैं आपके, नौजवान लोग, जो बहुत खुशाइन बात है, लेकिन ये लड़के लड़कियाँ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के निकले हैं, इन्हें मगरिब का तो पता है, इन्हें मेराबेल सिस्टर्स का पता है, इन्हें सफ्रजेट मूवमेंट का पता है, इन्हें मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो पूरा एक तहरीक है उसका पता है, मगर इन्हें ये नहीं पता कि बेगम जरी सरफराज ने क्या किया आइली कवानीन के लिए, इन्हें ये नहीं मालूम कि विमेंस एक्शन फोरम ने 1980 की दहाई में हदूद ऑर्डिनेंसेस और कानून शहादत वगैरह को पुशबैक देने के लिए क्या किया। क्या इस बात में कोई हकीकत है या नहीं है, या कोई डिस्कनेक्ट है?
नहीं, आई थिंक अगेन ये डिस्कनेक्ट है, बिकॉज़ अभी मैं ये गुफ्तगू जो सुन रही थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी रेजोनेट मेरे साथ इस तरह से कर रही थी कि वो अटैक्स जो पहले किए जाते थे वही एक एलिटिज्म का, एक बीइंग फॉरेन फंडेड, बीइंग वेस्टर्नाइज्ड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अटैक्स अभी भी कंसिस्टेंटली हो रहे हैं। एक और मैं ये कहूँगी कि कुछ
तब की,
जी बिल्कुल, और तब की और अब की मूवमेंट में कंटिन्यूटी और चेंज का एक सिलसिला है, एक डायलेक्टिकल किस्म का रिलेशनशिप है। वन थिंग दैट आई थिंक दैट द कंटेम्प्रेरी मूवमेंट हैज़ लर्नड, जहाँ पर मैं आपके साथ इख्तलाफ करूँगी, एक कंसर्टेड एफर्ट है। आप उठा के देखें औरत मार्च का, बेशक वहाँ पर किसी भी नॉन पाकिस्तानी फीमेल आइकॉन की आपको पोस्टर्स नहीं नज़र आएंगे। देर इज़ अ कंसर्टेड एफर्ट कि हमने, ये एक लर्निंग है ना तब से लेकर अब तक, कि हमने अपने कल्चरल जो अपनी हिस्ट्रीज हैं रेजिस्टेंस की, अपनी जो बहुत सारी कल्चरल सबवर्जन है वो हमने उसको रूट करना है पाकिस्तान के अंदर और सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ। पोस्टर्स के ऊपर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी है। उसमें आपको दुपट्टों वाली ख़वातीन नज़र आएंगी, शलवार कमीज़ों वाली, चूड़ियों वाली ख़वातीन नज़र आएंगी, मेहंदियों वाली ख़वातीन नज़र आएंगी। ये एक कंसर्टेड एफर्ट
है। और हिजाब वाली भी नज़र आएंगी,
बिल्कुल नज़र आएंगी,
स्कूटर पे बिल्कुल नज़र आएंगी, लड़की है वो,
क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक लर्निंग है, ये एक लर्निंग है कि हमने, और जो रेफरेंसेज हैं आपको वहाँ पर जो पोस्टर्स नज़र आएंगे उसमें आपको आसमा जहांगीर साहिबा नज़र आएंगी, आपको कंदील बलोच नज़र आएंगी, आपको और हमारी बहुत सारी जो है वो आइकॉनिक जो फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने रिजिस्ट किया माशरे के अंदर वो नज़र आएंगी। सो फिर उसके अलावा जिस तरह के इवेंट्स हुए, पिछले साल भी एक बड़ा नॉवल किस्म का कॉन्सेप्ट था, फेमिनिस्ट ढोलकी, ठीक है, जो कि एक प्योरली यू नो एक पाकिस्तानी वेरी वेरी रूटेड इन आर कल्चर. सो मेरे ख्याल में बहुत एफर्ट किया गया है इस परसेप्शन को जो है वो चैलेंज करने के लिए, दूर करने के लिए.
परसेप्शन है ही गलत, मतलब
वो तो है ही गलत, वो है ही गलत, ऐसा कभी भी नहीं था. अच्छा, इसके साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये भी है कि ये कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत वाजे तौर पे एंटी इम्पीरियलिस्ट भी हैं. तो जब ये बात की जाती है ना कि फॉरेन फंडेड और ये तो वेस्टर्न सकाफत को प्रमोट कर रही हैं और फलाना फलाना, अगर आप मंशूर पढ़ें तो ना सिर्फ ये कि जो मैं पहले बात कर रही थी कि एक बड़ा एफर्ट किया गया है अपनी हिस्ट्री, अपनी जो लोकल फेमिनिस्ट आइकॉन्स हैं, जो ख्वातीन की स्ट्रगल है यहाँ पर, उसको हाईलाइट करने का एफर्ट किया गया है, लेकिन साथ ही साथ एंटी इम्पीरियलिज्म की बहुत बात की गई है जो दुनिया भर में स्ट्रगल्स हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, फ्रीडम स्ट्रगल्स हों, चाहे उनको लिंक किया गया है ख्वातीन की स्ट्रगल्स के साथ. और ये बात की गई है जो दोगला मयार है हमारी वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनका, उसके बारे में बहुत बात की गई है. सो आई थिंक कम्प्लीटली एक बेसलेस चीज़ है. अगेन, आप स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं जब आपने किसी को डिसक्रेडिट करना है. और पाकिस्तानी माशरे के अंदर दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अगर आपने किसी भी तहरीक को डिसक्रेडिट करना है तो या आप उसको मज़हब के साथ जोड़ें, या फॉरेन फंडिंग के साथ जोड़ें, या हमारी सकाफत और हमारी गैरत के साथ उसको जोड़ें.
अच्छा नायाब, इसमें दिलचस्प बात जो मुझे नज़र आती है वो ये कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं यकबा दिगरे, उन्होंने जितनी फॉरेन फंडिंग ली है उसका तो अशर अशीर पाकिस्तान की गैर सरकारी तंजीमों या किसी और इदारे ने लिया ही नहीं है. और अब तो ये बातें खुल के सामने आ रही हैं कि अब तो हमारी सियासी जमातें भी फॉरेन फंडिंग बकौल के यानी उसकी बेनिफिशरी हैं. मैं नीलम आपा आपकी तरफ आता हूँ. एक बात इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की. देखिए, मुझे ज़ाती तौर पर एक अदब के तालिब इल्म की हैसियत से या एक इंसानी हकूक के एक माइनर एक्टिविस्ट की हैसियत से मुझे नहीं लगता कि मुझे तो कोई मगरबी सकाफत से, मगरबी तालीम से, मगरबी मौसीकी से, मगरबी इल्म अदब से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है. मेरा मसला तो मगरबी साम्राज्य से है. और ये बात मेरा ख्याल है कि इस पर हमारे सामईन के लिए भी ये बात बड़ी अहम है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई जो साम्राज्यत है, जो इम्पीरियलिज्म है जिसको नायाब ने कहा, उसके साथ हमारा टकराव है जो मग़रिब में चलने वाली इंसानी हकूक़ की तहरीकें हैं. देखिए, रेस की सारी लड़ाई मग़रिब में ही लड़ी गई है. तो यानी जो नस्ली इम्तियाज को खात्मे की लड़ाई हमारे यहाँ तो नहीं लड़ी गई, बल्कि मुझे तो लगता है कि हम लोग अभी तक बहुत से तासुबात का शिकार हैं रंग नस्ल अकीदे के एतबार से. जनूबी अफ्रीका जो है वो अफ्रीका है, शुमाली अमरीका है, बरतानिया है, इन सब में ये लड़ाइयाँ लड़ी गई. तो इस पर भी ज़रा सी रोशनी डालें कि हम अपने आप को जो एक आलमी सतह है, ग्लोबल स्पेस है, उसमें हम जुड़े हुए थे. जब तक कि आपने जिक्र किया, मैं आपसे कहूँगा कि वहीं से बात को आगे बढ़ाएं. 80 की दहाई तक, 90 की दहाई तक भी कुछ हद तक, लेकिन 90 से वो मामलात बदलने शुरू हुए. हमें ये पता होता था वियतनाम में क्या हो रहा है, हमें ये पता होता था यानी 70 की दहाई में हमें मालूम था वियतनाम में क्या हो रहा है, 80 की दहाई में हमें ये पता था कि नेल्सन मंडेला कौन है. तो अब ये कोई डिस्कनेक्ट हमारी तहरीकों का भी नहीं हो गया बैनुल अक़वामी तौर पर?
तहरीकों का तो आई कांट से हर तहरीक की तो बात नहीं मैं कर सकती.
ख्वातीन की तहरीक,
यस एंड नो, आई डोंट थिंक सो. आई मीन एक लेवल पे लगेगा आपको डिस्कनेक्ट. एक तो मैं वाजे करूँ कि जो आप भी कह रहे हैं कि वी हैव, हमें डिस्टिंक्शन फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि साम्राज्य न्योलिबरल ग्लोबल न्योलिबरल इम्पीरियलिज्म की पॉलिटिक्स क्या है और कल्चरल क्रॉस कल्चरल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ होती है.
ठीक है,
देखिए
यानी मुख्तलिफ सकाफतों के माबैन जो एक ताल्लुक,
है और वो बहुत एक एनरिचिंग चीज़ है. जो बर्रे सगीर का इंडो मुस्लिम कल्चर है वो दो कल्चर्स के मेल से निकला है ना. जहाँ आप बादशाही मस्जिद को देखें जो वो कंवल का फूल भी है और ऊपर वो
गुंबद
और मीनार भी हैं, तो वो एक नई चीज़ निकली है जो कि यहाँ की आइडेंटिटी का एक बहुत गहरा हिस्सा है. तो ये जो हम प्योरिज्म पे जाते हैं और सिंगुलैरिटी पे कि एक ही मज़हब, एक ही सोच, एक ही फिका, बाकी सारे काफिर, तो वो तो एक तो बंटता है सब कुछ. दूसरा, अपने आप को हम इतना महदूद कर लेते हैं और इतना महरूम कर लेते हैं और इतना गरीब कर लेते हैं कि हमारी जो इतनी एक मैं कहूँ रिच
मालामाल
एक
तहजीबी जो हमारा विरसा है
हम उसको उससे अपने आप को अलहदा कर लेते हैं. पर इसके टू कम बैक टू जो शुरू में बात छेड़ी गई अबाउट बॉडली राइट्स
जिस्मानी हकूक और जो अपने जिस्म पर इख्तियार
और मैं बात कर रही थी कि वैफ का क्योंकि फोकस जिस्म पे ही था बॉडली इंटेग्रिटी पे ही था मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल और फिजिकल पर हम कानून का रास्ता पकड़ रहे थे.
ठीक
फिर हम कॉशियस भी थे. देखिए
चूंकि आपने पहले जो बात कही कि कोई भी मूवमेंट किसी वॉइड में किसी खला में जन्म नहीं लेता
खला में जन्म
तो चूंकि उस वक्त ऐसे कवानीन नाफिस किए जा रहे थे पाकिस्तान में जिनसे औरतों के हकूक पर बराह रास्त जर्ब पड़ती थी तो वैफ ने उसे
और फोकस चैलेंज किया उस काउंटर किया जो औरत मार्च ने. और ये जो एक औरत मार्च अकेली नहीं है बहुत सी तहरीकें हैं इस वक्त नौजवान औरतों की. इन्होंने वो जो पर्सनल इज पॉलिटिकल जो एक एक फेमिनिज्म की इजाद है रेडिकल फेमिनिज्म की
जी
तो उसको इन्होंने पब्लिक डोमेन में ले आए हैं
और ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है.
ये बहुत कंट्रीब्यूशन है क्योंकि जो पर्सनल जो घर में सियासत होती है जो घर में इस्तेसाल होता है उसी की रेप्लिकेशन जो पैटर्न्स वहाँ सीखते हैं हम लोग लड़के लड़कियाँ
वो
स्केल अप होते हैं रेप्लिकेट होते हैं पब्लिक डोमेन में इंस्टीट्यूशनली कानून में तालीमी इदारों में और वो एक इस्तेसाल की जुड़त बनती जाती है सिस्टेमिकली. उसमें फिर ऑपरेशन भी आता है इनजस्टिस.
अच्छा जरा 90 के बाद के हालात पे आइए. बेनज़ीर भुट्टो मुंतखब हो जाती हैं 1988 के दिसंबर में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म.
बेनज़ीर के आने से पहले मैं ज़रा सा एक लेबर पे भी बात करूँगी कि जो तोहमत हम पे भी लगती थी एलिटिज़म की. हमारे तो खैर निकाह भी तोड़े थे मौलवियों ने कि इनके निकाह टूट गए. हमने कहा चलो
माशाल्लाह
आसान हो गया काम. तो वो था कि इनका ये लेबर से ताल्लुक नहीं है. वैफ क्योंकि लेफ़्ट ओरिएंटेड काफ़ी लोग थे इसकी मेंबरशिप में तो वो शुरू से अवेयरनेस थी कि ये
सब जुड़ के
काम करेंगे. और उन दिनों में 80s में वायत ने औरतों के यूनियन को तोड़ा.
अब वायत एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बैनुल अक्वामी
या और उन्होंने डिसमिस किया औरतों को जो प्रोटेस्ट कर रही थी और ये भी कहीं अपनी बिरादरी में कह दिया कि इनको नौकरी ना मिले. तो वैफ ने फिर नौकरियां दिलवाई उनको जितना करा सकते थे इधर उधर सपोर्ट किया. फिर ट्रेड यूनियंस के साथ भी औरतों के साथ काम कर रहे थे बल्कि और वो हमारी मीटिंग्स पे रेगुलरली आती थी. तो जो वायत के साथ हुआ वो तो मेरे सामने नहीं हुआ वो सुनी मैंने सुना है. बट रुबीना जमील आई थी हमारे पास और ये ग्रुप के हमारे जो मेल मेम्बर्स हैं ट्रेड यूनियन के वो पसंद नहीं करते हमारा यहाँ आना. वो या क्लास से घबराते हैं या सोचते हैं पता नहीं इनको फ्रॉक पहना देंगे हम लोग या क्या करेंगे. तो हमने कहा फिर आप क्या सोच रहे हैं. सो दे सेड कि हम कह रहे सोच रहे हैं कि हम एक अपनी फ़र्क तहरीक बना लें. और वो ज़रा से थे कि ये पता नहीं क्या कहेंगे. सब ने स्पॉन्टेनियसली वेलकम किया कि बिल्कुल बनाए हम आपके साथ हैं. इसी तरह मूवमेंट बढ़ती है और बल्कि लोगो वर्किंग वुमेंस का लाला रुख ने तो वो फिर हम एक दूसरे के मामलों में
शामिल रहे. ठीक
तो वो भी आई एक्सेप्ट के जितना काम हमें इकट्ठा करना चाहिए नहीं करते क्योंकि एक बुढ़े भी होते जा रहे हैं यार. नौकरियां भी करनी थी रोजी रोटी कमानी थी बच्चे भी पालने थे तो
खवातीन पे तो तहरी जिम्मेदारी होती है.
जितना मिल सके जहां जहां रबते बना सके पर थ्रू आउट एक कॉन्शियसनेस थी कि जितना हम करना चाहिए नहीं कर रहे.
अच्छा अब बताइए अब
90s जब बेनज़ीर आई तो एक तो जब ज़िया मरा तो लगता था कि ये कहां से मुआवजा हो गया. किसी के मरने पे खुशी नहीं करनी चाहिए, खुशी तो नहीं की पर एक जैसे बादल हटता है वो तो फीलिंग हुई। फिर बेनज़ीर आई तो हम लोगों को उम्मीद भी थी, तब हमारी भी मासूमियत थी, नहीं रियलाइज़ किया कि बेनज़ीर आई है, अगर आर्मी की सपोर्ट ना होती तो उसको नहीं आने देना था। आपको याद होगा काफ़ी टाइम लगा था बिफोर शी वाज एक्सेप्टेड एज प्राइम मिनिस्टर,
लेने से पहले
ओथ लेने से पहले,
और वजीर खारजा बदलने की इजाज़त नहीं मिली थी।
हाँ,
यानी कि साहबजादा याकूब ही रहेंगे वजीर खारजा। हाँ, इस पे बाकायदा और भी बहुत से मामला तय हुए,
वो जब माना तो फिर वो आए
जी।
तो एक एक जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि ये बेनज़ीर करेगी, वहाँ वी फेल्ट लेट डाउन। ऑन द अदर हैंड विद हाइंडसाइट एक देखा जाए तो एक फिज़ा खुलने की फीलिंग थी, और जाके उन लोगों से हम बात कर सकते थे, और काफ़ी जो पॉजिटिव कानून साजी हुई वो पीपल्स पार्टी की जो वुमेन पार्लियामेंटेरियंस थी
उनके जरिए,
उनके जरिए हम कहते थे ये हमने बनाया है, वैफ ने बनाया, या ऑर्गेनाइजेशंस दैट केम आउट ऑफ वैफ, क्योंकि वैफ के पास तो पैसे रिसर्च के नहीं थे ना।
तो फिर औरत फाउंडेशन ने जन्म लिया, असर ने,
असर पहले से था,
असर पहले से था, अच्छा।
सीमुर केम आउट ऑफ वैफ, क्योंकि हमें भी ये था,
बेदारी भी वजूद में आई,
बेदारी बाद में आया,
अच्छा।
सीमुर बना क्योंकि एज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म हमें वी रियलाइज कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मौलवी तो इस्लाम कोट कर रहा था ना,
तो आपने भी तहकीक,
तो फिर हमने कहा उसके लिए एक तंजीम हो जो कि फिर तहकीक को वहाँ ना रोके कि लो जी ये इस सवाल का जवाब मिल गया अब बंद कर दो।
तो तब आपने सीमुर बनाया,
तो तब सीमुर बना कि हम फिर जहाँ तक जिस जहाँ तहकीक लेके जाएगी वहाँ जाएगी।
फरीदा शेर उसके बानियान में है?
नहीं, मैं तो वलैत से घर आई हूँ तो ये ऑलमोस्ट बन चुकी थी, अंदर से जॉइन अस बन, इट वाज इन द प्रोसेस। फरीदा शेर थी, लाला रुख थी, नसरीन शाह थी, निकत सईद खान थी, और आई थिंक दैट वाज इट। और मैं थी,
ये लोग थे हमारे,
ये लोग।
अच्छा, अब जरा जो आज के हालात को आप कैसे देखती हैं, कुछ गेन्स भी तो हुए ना, जैसे वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट आया।
गेन यार, पहला गेन तो ये हुआ कि जब हम ने शुरू किया है काम तो मुझे लोग पूछा करते थे पर औरतों का मसला क्या, आप तो घर की मलका हो, इतनी इज्जत आपको ये माशरा देता है। वैफ के शुरू के रौला डालने से, पीट पिटाइयाँ करने से जमात इस्लामी तक ने विमेंस विंग शुरू कर दिया। आई मीन कबूल तो किया ना कि विमेन का इशू
बहुत बहुत बड़ी बात,
दैट वाज अ मेजर।
कानून में तब्दीली,
फिर कानून में तब्दीलियाँ आई।
अच्छा, आखिरी सवाल फिर अब मैं नायाब आपसे करूँगा, और वो सवाल ये है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तो जी चाह रहा है कि ये गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की एक पाबंदी होती है, और रखेंगे हम, कोशिश करेंगे कि सिलसिले में और गुफ्तगू रहे और एक संजीदा गुफ्तगू और मुकालमा आगे बढ़े। आपसे आखिरी सवाल ये कि आजकल किस किस्म का दबाव जो ख़वातीन की तहरीक से हमारे लड़कियाँ और लड़के, नौजवान ख़वातीन, नौजवान मर्द वाबस्ता हैं, या ख्वाजा सरा भी वाबस्ता हैं, उन पे किस किस्म का दबाव जो है वो आता है, और किन क्वार्टर्स से आता है, और क्या क्या हिरासानी है, या किस किस्म की एक जबर का सामना करना पड़ता है?
बिल्कुल, आई थिंक बहुत सारी, जैसे आपने बात किया, गेंस भी बहुत हुए हैं, लेकिन हम रहते हैं एक इस तरह की दुनिया में जहाँ पर सोशल मीडिया है, जहाँ पर सोशल मीडिया ने अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो हरासमेंट के, ट्रोलिंग के बहुत सारे दरवाज़े भी खुले हैं उससे। तो पहली तो ये चीज़ है कि कंटेम्प्रेरी जो सोशल मूवमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे वो जो विजिबल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके लिए एक नया चैलेंज सामने आया है अपनी प्राइवेसी और अपनी सिक्योरिटी के लिए। उनको ख़ास जो है वो इकदामात करने पड़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, और ये शायद सुनने में नहीं लगता, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से ख़वातीन को इंटिमिडेट किया जाता है। हम सब विटनेस हैं इस चीज़ के, कि कैसे लोगों की, हमने पोस्टर्स के साथ ये देखा कि किस तरह से लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंडेंजर किया, क्योंकि ना सिर्फ कुछ पोस्टर्स जो थे वो डॉक्टर्ड थे, जिसके बाद वो ख़वातीन जिन्होंने वो उठाए हुए थे, लेकिन इवन जो सही पोस्टर्स भी थे maybe they were saying something which, you know, to the rest of the people is very radical. And that means you immediately jo hai, aapne unko open up kiya attacks ke liye aur unki safety ko aapne endanger kiya. तो सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये है कि आज की ये दुनिया जिसके अंदर एज सच कोई भी अब प्राइवेट सिटीज़न उस तरह से नहीं है क्योंकि उसकी एक पैरेलल ज़िंदगी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर. तो ये मूवमेंट्स को बैलेंस करना है अपने इंडिविजुअल राइट्स को और साथ साथ सिक्योरिटी को भी, बहुत बड़ा चैलेंज है. और इसके अंदर ऑफकोर्स रियासत की एक जिम्मेदारी है. अब जो पिछले 3-4 सालों के अंदर हमने जो देखा है उसके अंदर क्योंकि रियासती जबर बढ़ा था, पर्टिकुलरली जो वुमेंस राइट्स की मूवमेंट्स और ये जो ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जबर बढ़ा था, तो ये भी एक नया चैलेंज था. हमने ये देखा कि उससे पहले जो है वो जैसे अभी मैम भी कह रही थी कि देर वॉज कॉन्फ्लिक्ट बट ऑल्सो सिनर्जी बिटवीन पोलिटिकल गवर्नमेंट्स एंड सोशल मूवमेंट्स, राइट. बट हमने आई थिंक इसका एक रिवर्सल देखा इन द लास्ट 4 years, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हम देखेंगे कि ये चीज़ नहीं होगी. बट एट द सेम टाइम आई थिंक क्योंकि मैं होपफुल नोट के ऊपर इसको एंड करना चाहती हूँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि आजकल की जो नौजवान ख़वातीन हैं उनके पास पहले से कहीं ज़्यादा आवाज़ भी है, थैंक्स टू जो पहले से एक स्ट्रगल चलती आ रही है उसके बेनिफिट्स हमारे पास आए हैं, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी आवाज़ इतनी बुलंद है कि 8 मार्च से पहले जो है वो लोग डर के और गुस्से में जो है वो तैयारियां करना शुरू कर देते हैं कि अब हमने किस तरह से जो है वो इनको अपोज करना है, डराना है. लेकिन फिर भी बहुत सालों से हम डरे नहीं, तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा साइन है.
बहुत बहुत शुक्रिया नायाब. और मैं समझता ही हूँ कि आज की गुफ्तगू से मेरे लिए जो एक बात मैंने सीखी है और हासिल है वो ये कि आपका ख्वाब जितना बड़ा हो उतना ही आप में मायूसी और तलखी मुश्किल से आती है. नीलम हुसैन साहिबा, आपका मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाला, इतना वक्त निकाला हमारे लिए. और नायाब अली जान, आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. और ख़वातीन हज़रात, फिर पॉडकास्ट की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.
पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल, इस मौके पर VOA उर्दू आपके लिए ऐसी कहानियाँ और गुफ्तगू ला रहा है जिनमें बात होगी पाकिस्तान के सियासी, सकाफती और माशरती तनाव के हर पहलू पर. हम पेश करेंगे मुख्तलिफ नुक्ते नज़र और फिक्रंगेज ख्यालात. इस तारीखी मौके पर VOA उर्दू की नशरियात सुनते रहिए. इस खुसूसी पॉडकास्ट की अगली किस्त में हम बात करेंगे पाकिस्तान में टीवी और फिल्म के माजी और हाल पर.